لله متفاه، الحمد لله متفاه، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، كلك مجلس ب مال كي وبال پہ گفتگو کر رہے تھے. مال کے چار وبال بیان کیے جا چکے. سب سے پہلا یہ کہ مال کی وجہ سے انسان کے لیے گناہ کرنا آسان. دوسرا یہ کہ مال کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تیسری چیز جو ہم نے بیان کی کہ مال کی وجہ سے انسان کے اندر تکاثر آ جاتا ہے، مال کا مقابلہ آ جاتا ہے. اور کل کی مجلس میں ہم نے چوتھی چیز بتائی، جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، دنیا میں سہولت آ جاتی ہے، تو اس کو موت سے وحشت ہونے لگتی ہے، موت کے تذکرے سے وحشت ہونے لگتی ہے. آج کی اس مجلس میں مال کی ایک اور وبال بیان کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے اندر مال کو جمع کرنے کی حرص بھی آتی ہے. تو کئی مرتبہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے اتنی محنت سے یہ مال کمایا ہے تو اب مجھے مال کو جمع کرنا چاہیے. جو مال وہ اسے کمائے بغیر آ جاتا ہے، جیسے کسی نے تحفے کے طور پہ دے دیا یا ایسے مل گیا کہ اسے امید نہیں تھی، تو وہ تو سمجھتا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، اور جو کمایا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرا اپنا ہے، میں نے محنت سے بڑا کمایا ہے. ایک آدمی بھی کئی مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو وہ جو مال جو جس کو وہ یہ سمجھتا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا، اس میں پھر بھی خرچ کرتا ہے تھوڑا، چلو یہ تو فری میں آیا ہے. جو میں نے کمایا ہے نا، بس ایسے آسانی سے خرچ نہیں کرتا. تو ایک مال جمع کرنے والا وہ ہے، وہ تو ہر وقت بس اس کو یہی ہوتا ہے کہ مال میں نے خرچ نہیں کرنا. مگر ایک تھوڑا سا اس سے بہتر ہوتا ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں جو کمایا ہے نا، وہ اتنا میں نے زبردست طریقے سے خرچ نہیں کرنا ہے، وہ میں نے بچا بچا کے رکھنا ہے. مگر جو فری میں آ گیا ہے، کسی نے ہدیہ دے دیا یا اس طرح سے آیا کہ مجھے امید نہیں تھی، کہتا یہ اللہ کی طرف سے، اس میں سے تھوڑا بہت پھر بھی خرچ کر سکتا. مگر سچی بات یہ ہے کہ جو امید کے بغیر آیا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی میں نے کمایا ہے، وہ بھی اللہ نے دیا ہے. تو جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، جو بھی مال ہمارے پاس ہے، وہ اللہ کا دیا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سب سے بڑا حق اللہ ہی کا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا وہ بہتر ہے. اور مال جمع کرنے والا اور مال میں بخل کرنے والا، بڑی وعیدیں آئی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، جب تک مال خرچ نہیں کرو گے تب تک نیک نہیں بن سکتے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز ہرگز نیک نہیں بن سکتے. عربی زبان جو جانتے ہیں، لن تنالوا البر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم نیک نہیں بن سکتے، کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم ہرگز ہرگز نیک نہیں بن سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم وہ مال خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو کتنے ہی سجدے کیوں نہ کر لو اور کتنی دینی کتابیں کیوں نہ پڑھ لو، جب تک مال خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے، نیکی نہیں ہے. कि दूसरी बात ये भी है कि जब तक माल खर्च करने का शौक नहीं होगा तो भी नहीं। माल खर्च करने के साथ दिमागी सुकून का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बात में फर्क पुराने बाग में फरमा रहे हैं अल्लज़ीन युन्फिकून अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहार, जो अपना माल खर्च करते हैं रात में भी और दिन में भी, सिर्रा वअलानियत, चुपके भी खर्च करते हैं ऐलानिया भी खर्च करते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके ऊपर कोई खौफ ना उनके अंदर कोई गम आता है। जो माल खर्च करने की आदत रखता है उसकी तबीयत के अंदर सुकून होता है। जो माल जमा करके रखता है फिर उसको फिक्र ही होती है हर वक्त कि 1 रुपया इधर न लग जाए 1 रुपया उधर न लग। हमारे उर्दू में एक कहावत भी है कि चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। याद आ गया, बस उर्दू की एक कहावत भी है। फिर उसको यही फिक्र होती है कि बस 1 रुपया भी मेरा गलत ना लग जाए, और माल थोड़ा सा जाया हो गया या माल कहीं ऐसे लग गया कि जहां वो समझता था कि सही नहीं लगा है, तो इससे बढ़ के कोई गम नहीं है उसके लिए। ऐसे बंदे के लिए बड़ी वईदे हैं, यानी ये जो बुखल करना है माल को सिर्फ जमा करना, या माल को खर्च करने की नीयत ना रखना, या माल को खर्च करने का शौक नहीं रखना, ऐसा करना जो है इस बंदे के लिए पुराने पाक में बहुत सारी वईदे आई हैं। बल्कि जो अपना माल खर्च करता है खुला खर्च करता है, अपने ऊपर भी करता है मगर लोगों पे ज्यादा करता है। अली से बाकी उसे ये कायनात का सबसे बेहतरीन इंसान, खैरुन नास मैं यनफाउ नास, लोगों में सबसे अच्छा वो जो दूसरों का। एक हदीस में आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो दूसरों को खाना खिलाए। अब जो खूब दावते कर रहा है आम बंदा तो कहेगा यार बड़ा फजूल खर्चा ही है, इधर भी जाके खाना खाता है दोस्तों को खिला आता है, उधर भी दोस्तों को खिला आता है। तो वालदेन कई मरतबा शिकायत करते हैं कि बस सारा वक्त दोस्तों को खिला रहा होता है, वालदेन की नजर में कई मरतबा वो बड़ा फजूल खर्च होता है। तो सच्ची बात यह है कि बहुत बड़ी एक सिफत, अच्छी सिफत है, एक बंदा दूसरे के ऊपर अपना माल खर्च करने के लिए तैयार है। तो माल जो खर्च करने के लिए तैयार वही असल में नेक है, माल जो खर्च करने के लिए तैयार उसी को जहनी सुकून मिलेगा, माल जो खर्च करने के लिए तैयार उसी के माल में बरकत होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं कसम खा के कहता हूँ कि माल सदका करने से तुम्हारा माल कम नहीं होता है, माल बढ़ता है। अल्लाह ताला बहुत ही अजीम है, बहुत ही गयूर है। अगर अल्लाह के रास्ते में हमने माल खर्च किया तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला वापस नहीं करते, बढ़ा के वापस करते हैं। तो इसलिए माल खर्च कर लेने का फायदा यह है, इंसान की रूहानियत भी बढ़ती है, आखिरत में भी बहुत उसको फायदा होता है, तो मजे की बात यह कि दुनिया में भी उसके पास माल खूब होता है। इतने सारे सहाबा इकराम ने इतना इतना माल खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, इतने तस्करे हजरत उस्मान ने झेले, फिर इतने तस्करे हजरत सिद्दीक अकबर झेले और सहाबा, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जिसने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उसके बाद वो बेचारा गरीब हो गया। माल खर्च करने से इंसान गरीब नहीं होता, माल खर्च करने से ही माल बढ़ता है, वरना इंसान के पास माल होते हुए भी वो गरीब रहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में अमीर शख्स वो नहीं है जिसके पास माल ज्यादा हो, अमीर तो वो है जो दिल का अमीर है, जो माल लेके सिर्फ माल को जमा करके और एक तरफ रख रहा है, उसकी अमीरी का किसी को क्या पता। जिसके माल से दूसरे को फायदा हो रहा है उसको लोग कहेंगे कि हाँ ये अमीर है। तो हमारे हजरात जो है, हमारे मशाइख फरमाते कि मालदार बनो, माल के चौकीदार न बनो। कई मरतबा ऐसा ही होता है, इंसान बस माल की चौकीदारी करता रहता है, इस दुनिया से चले जाता है और उस माल को फिर औलादे उड़ा देती है। तो इस माल से बड़े फायदे हासिल हो सकते हैं, मगर कई मरतबा ये माल आता है तो बस इंसान कहता है ऐसा ना हो ये माल मुझे छोड़ के चला जाए, इसलिए बस उसको जमा करता रहता है। तो माल के बवाल में से एक बड़ा बवाल ये है, ये माल जब आता है तो इंसान का दिल करता है कि बस मैं इस माल को किसी न किसी तरह से अपने पास रखूं और अपने से अलग न करूं। और आम तौर पे तो इसको बहुत ही लाइट लिया जाता है कि ये कोई ऐसी बुरी सिफत नहीं है, कंजूसी हम कहते हैं, कोई बात नहीं। हमारे एक जानने वाले हैं, वो तो कंजूसी को एक बड़ी अच्छी सिफत समझते हैं। मुझे कह रहे थे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कारोबारी शख्स है, बड़ा कंजूस है मेरी तरह से, बहुत साफ साफ से, पर मेरी तरह से बहुत अच्छा कंजूस है। तो बहुत सारे और गुनाहों को तो हम बड़े बड़े गुनाह समझते हैं और उनको हम बड़ा छुपाते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए, मगर ये कंजूसी जो है ना, इसको कई सारे लोग कहते हैं कि जी अकलमंदी है कंजूसी, मगर कुरान उठा के देख ले, हदीस पाक में आया है कि उसके गले में तौक, जो बुखल करता है उसके गले में तौक डाल के जहन्नम में डाला जाएगा, इस बंदे ने माल जमा करने की इसके अंदर आ गए। ये छोटा गुनाह नहीं, ये बड़ा गुनाह है, इंसान से पैसा खर्च ही नहीं हो रहा, और ये बुखल जब बढ़ जाता है तो दूसरों पे तो दूर की बात, बीवी बच्चों पे भी पैसा खर्च करना उसको मुश्किल लग रहा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत माल के वबाल से हमें महफूज फरमाए, नबी ने सलात वसलाम फरमाए इस मालदारी की कदर कर लो, इसको गनीमत समझ लो फकर आने से पहले। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, उसकी कदर यही है कि इस माल को अच्छी तरह से खर्च कर दिया जाए। आपका الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه برحمتك يا أرحم جزاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.